श्री साई राम साई वचनामृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। एक राजा थे जिनका नाम था सुदोधन। बहुत अरसे के बाद, बहुत प्रार्थनाओं के बाद, बहुत साधनाओं के बाद उनके घर में पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा गया सिद्धार्थ। एक बार राजा के महल में एक पंडित आया जो बहुत ज्ञानी था, ज्योतिष था। उसने कहा, हे राजन, ये तुम्हारा पुत्र एक सन्यासी बन जाएगा। राजा ने जब इन शब्दों को सुना, उनके शरीर में तिरंगे कौन गई। मैं यहां का महाराज, बहुत बड़ा राजा हूं, मेरा पुत्र यहां का राजा बनना चाहिए, वो सन्यासी कैसे बन जाएगा। लेकिन मैं जानते थे कि ये जो पुरोहित जी, जो पंडित जी, जो ज्योतिषी सामने बैठा है, उसकी बातें गलत नहीं होती हैं। फिर भी अपनी ओर से प्रयास किया कि मैं पुत्र को बाहर का संसार देखने नहीं दूंगा, उसके राज्य में इतना सुख दूंगा, उसको तैयार करूंगा कि यहां का राजा बन जाए। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। पुत्र जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसका विवाह कर दिया। यशोधरा नाम था उस कन्या का। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हो गया और सिद्धार्थ को युवराज घोषित कर दिया गया। जब सिद्धार्थ युवराज बन गए, भावी राजा हो गए, होने वाले राजा हो गए, उनके मन में उठा कि मेरे को चाहिए जाके अपनी जनता जनार्दन को मिलूं, मैं जाकर देखूं कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, लोग किस हालत में जी रहे हैं। कल को यहां का मैं राजा बनूंगा, ये मेरा दायित्व होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं अपने राज्य को ठीक से चलाऊं, यहां के लोग प्रसन्न हों। युवराज ने अपने सारथी को बुलाया और रथ पर बैठकर पहली बार अपने महल की चार दीवारी से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ी स्त्री को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में एक चलने की लाठी ले रखी थी। सिद्धार्थ ने कभी ऐसा व्यक्ति देखा नहीं था जो झुक के चलता हो। आश्चर्य में आ गए, ये कैसा जीव है। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये क्या है सामने, ये किस तरह का जीव है, मैंने कभी ऐसा जीव देखा नहीं है। सारथी बोला, युवराज, जब कोई बूढ़ा हो जाता है, कई बार उनकी कमर झुक जाती है, बुढ़ापे में चलने में कठिनाई आती है, लाठी का सहारा लेके चलते हैं। ये एक वृद्ध स्त्री है, बूढ़ी स्त्री है, कमर झुक गई है, चल नहीं पा रही है, इसलिए लाठी का सहारा लेके चल रही है। युवराज ने आगे प्रश्न किया, क्या ये सभी वृद्ध लोगों को होता है, या यूं मानिए क्या सभी वृद्ध होते हैं, सभी बूढ़े होते हैं। सारथी ने उत्तर दिया, महाराज, हे युवराज, बुढ़ापा प्रकृति का नियम है। अगर उम्र है, अगर सांसें बची हुई हैं इंसान की, तो बुढ़ापा निश्चित है। कमर झुकेगी या नहीं झुकेगी ये मालूम नहीं है, लेकिन बुढ़ापा निश्चित है। रथ आगे बढ़ा, वहां देखा गया कि एक बीमार व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ खांस रहा था। उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। युवराज ने प्रश्न किया, हे सारथी, मुझे ये बताओ, ये व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा क्यों, ऐसे क्या हो गया है, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? युवराज ये बीमार है, रोग से ग्रस्त है, इसको बहुत खराब बीमारी है, इससे खांसी बंद नहीं होती है, इसको सांस लेने में तकलीफ होती है, और कोई नहीं जानता कब किसको कौन सा रोग पकड़ ले। युवराज अचंभे में आ गया, आज मैं पहली बार महल से बाहर आया हूं, क्या क्या देख रहा हूं। रथ को और आगे बढ़ाया गया, वहां उन्होंने देखा कि चार व्यक्ति अपने कंधे पे एक अर्थी लिए हुए हैं, एक मृत शरीर अर्थी पर पड़ा हुआ है, और लोग कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। युवराज से रहा नहीं गया, पूछा मुझे समझ नहीं आ रहा, ये चार व्यक्ति एक दूसरे आदमी को लेके जा रहे हैं, पांचवे व्यक्ति को, वो लेटा क्या हुआ, सो क्यों रहे? भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, सारथी बोला युवराज ये मृत शरीर है। ये मृत शरीर क्या होता है, युवराज ने पूछा। जब हमारी सांसें समाप्त हो जाती हैं, जब आत्मा हमारे शरीर को त्याग देती है, ये शरीर वहीं का वहीं गिर जाता है, फिर कभी उठता नहीं है, खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, उसके बाद स्टार्ट डिकेइंग आफ्टर दिस। जब तक हम जीवित हैं, हम शिवम हैं, वी आर अलाइव, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हम शवम बन जाते हैं, डेड बॉडी, एंड डेथ इज अनअवॉइडेबल। मृत्यु से आप नहीं बच सकते, वो निश्चित है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से आपकी मृत्यु निश्चित हो गई, ये शरीर तो आपको त्यागना ही होगा। कहते हैं युवराज सिद्धार्थ के हाथ से तलवार गिर गई, शरीर कांपने लग गया, बोला हे सारथी रथ को वापस मोड़ो, महल लुटकर आ गया। रात को भोजन नहीं किया, विचार करते रहे, सोचते रहे, मनन करते रहे, उनके बगल में उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र सो रहे थे, अपनी पत्नी और बच्चे को देखा, मन में विचार उठा, सर्वम दुखम ऑल इज सोरो, सर्वम भयम ऑल इज फिल्ड विथ फियर। पहले बोले सर्वम दुखम, सब तरफ दुख है, सर्वम भयम, सब जगह डर है, फिर बोले सर्वम अनित्यम, सब कुछ अस्थाई है, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, अंत में बोले सर्वम शून्यम, सब शून्य है, कुछ नहीं है, ऑल इज एम्प्टीनेस। अचानक उठे और अपने महल को छोड़ के सत्य के तलाश में बाहर निकल गए। कई वर्षों तक साधना करी, तपस्या करी, कितने साधुओं को मिले, संतों को मिले, उनकी वाणियां सुनी, आध्यात्मिक गाथाएं सुनी, शास्त्रों का अध्ययन किया लेकिन मन में तृप्ति नहीं आई। कहते हैं एक बार 6 वर्ष तक तपस्या की और आंखें खोली, बोले वो पकड़ा गया है, मैंने चोर को पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया मैंने। ये चोर कौन है? मन। इस बात का उनको एहसास हुआ कि मन ही हमारा चोट है, मन के कारण सारे दुख आते हैं। माइंड इन द रूट कॉज, माइंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। इफ यू कंट्रोल योर माइंड यू विल नेवर सफर। अगर आप अपने मन को नियंत्रण कर लेते हैं आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। यहां से उनकी यात्रा आगे बढ़ती है। कभी आपने विचार किया हमारे जितने भी दुख हैं सारे मन के हैं? कहते नहीं है कि मन के माने हार है, मन के माने जीत है। महात्मा बुद्ध ने, यहां से उनका नाम बुद्ध पड़ जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ही गॉट एनलाइटेंड। विचार कीजिएगा कि मानव का कर्तव्य क्या है? क्या अपनी धन संपत्ति की रक्षा करना, महात्मा बुद्ध ने यहां पर बताया कि मानव का कर्तव्य अपने अंतर में बैठे हुए ईश्वर को जानना है। अब क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार से हमें अंतर की यात्रा करनी है? एक कोड ऑफ लिविंग है, कोड ऑफ कंडक्ट है। आप जरा रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, बुद्धिज्म में इसको कहा गया एटफोल्ड पाथ, लेकिन आज हम उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स को लेके, कुछ ऐसे बिंदुओं को पकड़े जो हमें सही रास्ते पर लेके जाए। पहली है राइट विजन, सम्यक दृष्टि। कहते नहीं जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। पहला प्रश्न उठता है हमारी आंखें दो हैं, छोटी सी हैं लेकिन पूरी दुनिया देखती है। आप जो भी देखते हैं अपनी आंखों से, आपके नेत्रों से जो भी आपके भीतर जाता है आपके चित्त पे जाकर छप जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है। तो यहां पर महात्मा बुद्ध कहते हैं राइट विजन, सम्यक दृष्टि, अर्थात ऑल दैट यू सी बी इट गुड और बैड गेट इम्प्रिंटेड इन योर हार्ट फॉर एवर। आप जो भी देखते हैं अच्छा या बुरा वो आपके हृदय में जाकर छप जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छा देखना चाहिए। अगर इंद्रियों की बात करें तो हम कानों से सुनते भी हैं, कहा गया सम्यक श्रवणम, राइट लिसनिंग, सम्यक दृष्टि और सम्यक श्रवणम अर्थात राइट विजन एंड राइट लिसनिंग विल लीड यू टू राइट फीलिंग, सम्यक भावम। जब हमारे अंदर अच्छे भाव ही नहीं उठेंगे तो मानव कहलाने लायक नहीं रह जाते। विचार कीजिएगा आप, सम्यक दर्शनम, सम्यक दृष्टि, राइट विजन, इसे कहा गया फर्स्ट रिक्विजिटिव, सब इम्पोर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज सबसे पहले हमें सीखनी है, हैविंग द राइट विजन। हम जिस तरह की चीजें देते हैं उस तरह के भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। अगर हम सारा दिन टीवी पे चिपके रहे, टीवी देखते रहे, इंटरनेट देखते रहे, मोबाइल फोन में चिपके रहे और ढंग की चीज नहीं देखेंगे, वो हमारी टेंडेंसी बन जाती है। जो हम देखते हैं उस प्रकार के भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं, उस प्रकार के विचार बनते हैं, वो विचार हमारी वाणी मन के बाहर निकलते हैं। इसलिए कहा गया सम्यक वाणी, राइट स्पीच। महात्मा बुद्ध के एट फोल्ड पाथ के अंदर जो शब्द हैं वो इस प्रकार है, राइट विजन, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट इनर कॉन्शियसनेस, राइट कर्मा, राइट साधना, राइट लिविंग, राइट मेडिटेशन। आपकी वाणी अच्छी हो, कहीं पर भगवान बाबा ने कहा था ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड लविंगली, हमेशा मीठा बोलो, प्रेम से बोलो। आपने देखा होगा जैसे आपके शब्द होते हैं उस प्रकार का रिएक्शन आपके सामने आता है। सम्यक अंतकरण, राइट इनर कॉन्शियसनेस। हम जीवन में हजारों किताबें पढ़ते हैं, हम अपने मन के अंदर ना जाने कितना गार्बेज भरते हैं, कितना गंद भरते हैं, कितना कूड़ा करकट डालते हैं। तो राइट इनर कॉन्शियसनेस का मतलब है कि अपने भीतर के अंतरकर्ण को साफ रखना। अर्थात प्योर थॉट, प्योर विजन, प्योर हियरिंग, प्योर स्पीच, समझे कर्म बता दिया। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अब अच्छे की व्याख्या क्या है? हाउ डू यू से माई कर्म इज अ गुड और बैड? आप कोई कर्म करते हैं अगर उसकी गवाही आपका मन देता है, आपका हृदय देता है, आपका अंतरकर्ण देता है, आपके अंतर की वाणी देती है, इफ योर इनर वॉइस एंडोर्सेस इट, अगर उस कर्म को करते हुए आपके अंदर से आवाज आती है कि आपके आराध्य देव प्रसन्न होंगे आपसे, तो अवश्य निश्चित उस कर्म को कीजिए। अगर आपके अंतर से आवाज आती है कि आपके आराध्य देव आपकी बात को नहीं एंडोर्स करेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं सहमति देंगे, तो कर्म अच्छा नहीं है। अच्छे कर्म के लिए सबसे पहले चाहिए प्योरिटी एंड हार्मनी इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। मन, वाणी और कर्मों में पवित्रता और एकता अनिवार्य है। सम्यक साधना, हमारी साधना सही होनी चाहिए, हमारी साधना परमात्मा को प्राप्त करने की होनी चाहिए, ना कि संसार को दिखाने के लिए, ना कि संसार को पाने के लिए, ना कि संसार की उपलब्धियों के लिए। तो उन्हें शॉर्ट में क्या कह दिया, गुड विजन, गुड थॉट, लिस्निंग टू गुड थिंग, गुड स्पीच, गुड एक्शन, इसे कहा गया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इसे कहा गया सम्यक साधना, इसे कहा गया राइट साधना। क्या इसमें गुड विजन, अच्छी दृष्टि हो, गुड थॉट, अच्छे विचार हो, गुड हियरिंग, लिस्निंग टू गुड थिंग, गुड स्पीच, अच्छी वाणी हो, गुड एक्शन, अच्छे कर्म हो, इसे साधना कहा गया है। सम्यक जीवनम, आप अपने जीवन को चलाने के लिए कहते हैं सम्यक, राइट लिविंग बोला गया है अंग्रेजी में, लेकिन सम्यक जीवनम कहा गया है संस्कृत में। जीवनम करता लिविंग, तो आप अपने जीवन को किस प्रकार से जीते हैं और किस प्रकार से आप, ये भी कहीं बस मैंने पढ़ा था कि सम्यक लाइवलीहुड, किस प्रकार धन को कमाते हैं। आप अपने जीवन में जो आप पैसा कमाते हैं, जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या वह सही है? किसी गरीब के आंसू तो नहीं छिपे उसके अंदर? किसी की आह, किसी की तड़प तो नहीं है? किसी को धोखा तो नहीं दिया है? किसी के पैसे तो नहीं हड़पे हैं? किसी की रातों की नींद तो नहीं खराब कर दिया आपने? ये भी कह दिया कि मेडिटेशन भी ठीक होनी चाहिए, आपका ध्यान जो लगाते हैं वो भी सही होना चाहिए। तो एसेंस क्या है? हम व्याख्या एट फोल्ड पाथ की नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ पॉइंट को लेकर सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो बातें बोली हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उनको जीवन में किस प्रकार से उतारा जाए। व्हाट इज द एसेंस ऑफ बुद्धा टीचिंग? भगवान बाबा ने इन्हीं शब्दों को बहुत सिंप्लीफाई करके साधारण शब्दों में आपके सामने बोल दिया, सी नो ईविल, सी व्हाट इज गुड, कोई खराब चीज मत देखिए, अच्छी चीज देखिए, हियर नो ईविल, हियर व्हाट इज गुड। अब ईविल क्या होता है? किसी की बुराई सुनना भी ईविल है, गपशप सुनना ईविल है। स्पीक नो ईविल, स्पीक व्हाट इज गुड, अच्छा बोलो। थिंक नो ईविल, थिंक व्हाट इज गुड, अच्छा सोचो। डू नो ईविल, डू व्हाट इज गुड। See no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Speak no evil, speak what is good. Think no evil, think what is good. Do no evil, do what is good. This is the way to God. ये भगवान तक जाने का एक रास्ता है। आपने सुना होगा जब हम कहीं बुद्धिज्म की बात करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, मैं अपनी बुद्धि के शरण में जाता हूं, वो बुद्धि जो मुझे सही रास्ते पे लेके जाए, वो बुद्धि जो मेरे को अच्छी कंपनी दे, और मैं इस बुद्धि का प्रयोग समाज के लिए करता हूं, समाज की सेवा में, और हम सब एक साथ आनंद को प्राप्त करते हैं। इसकी व्याख्या फिर करेंगे। जय श्री सानू।